काजल और आशिका की आज मॉल में पहली बार मुलाकात हुई थी। काजल अपनी तरफ से आशिका की हेल्प करना चाहती थी, पर आशिका को अब किसी भी रिश्ते और इंसान पर आसानी से यकीन नहीं होता था, खासकर उस स्थिति में जब एक अनजान औरत आकर पहले उसे अपनापन दिखाती है और फिर डांटने लगती है। इसी चक्कर में आशिका और काजल की पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही। आशिका ने भले ही काजल से हुई इस मुलाकात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया और भुलाकर घर चली गई थी, लेकिन काजल के दिमाग में आशिका की बातें घर कर गई थी। हालांकि उसने उसका चेहरा तक नहीं देखा था, कहीं न कहीं उसे अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था। काजल घर पहुंची तो उसने देखा कि आशी पूरी शिद्दत से हाउस हेल्पर की हेल्प कर रही थी, उन्हें हर एक चीज समझा रही थी। आशी अपने बड़ों से बहुत तहजीब से बात करती थी। आज से पहले उसने घर के कामों में इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। काजल होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए आशी की तरफ देख रही थी, जो इस वक्त उनके घर की पुरानी हाउस हेल्पर, जो 60 के करीब थी, उनके करीब खड़ी होकर उन्हें पूरे हक से डांट रही थी। करुणा आंटी, लगता है मुझसे दो बातें सुनना आपका फेवरेट काम है। पिछली बार पापा ने आपको डांटा था, लगता है इस बार ये काम मुझे करना होगा। आपको अपना ध्यान रखना चाहिए और इस उम्र में आपको आराम की जरूरत है। मालती आंटी ने बताया था कि आपकी तबीयत खराब रहती है, फिर आप यहाँ क्यों चली आईं? आशी आंखें छोटी करके बोली। करुणा ने आशी की बचपन से देखभाल की थी। उनकी उम्र बड़ी हो जाने के बाद उनकी बेटी सिंघानिया मेंशन में काम करती थी। क्या करूं, खुद को रोक नहीं पाई जब पता चला कि आज मेरी आशी के ससुराल वाले आने वाले हैं। चिंता मत करो, काम नहीं करूंगी, बस ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं ये देखने वाली हूँ। तुम्हें नहीं पता, लेकिन इन पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है, वरना सब बेपरवाह हो जाते हैं, करुणा ने हंसते हुए कहा। हाँ, अगर आप सारा काम दूर से देखने आई हैं तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और अच्छा हुआ जो आप मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए आईं, आशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया और उनके गले लग गई थी। आशी अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती थी जिससे वो सिंघानिया फैमिली में अपनी इमेज अच्छी बनाकर रख सके। वहीं दूर खड़ी काजल ने आशी को एक हाउस हेल्पर के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते देखा तो उसके चेहरे पर प्राउड स्माइल थी। अचानक उसके दिमाग में आशिका की यादें ताज़ा हो गईं, जिसने उसकी मदद करने के बाद थैंक यू तक नहीं कहा था, ऊपर से काफ़ी रूडली उसे दो बातें सुना कर गई थी। इसी बीच आशुतोष घर के अंदर आया, उसने काजल को मुस्कुराता हुआ देखा। उन्होंने काजल की नज़रों को फॉलो किया तो वो आशी को देख रही थी। क्या बात है, आज आशी को देखकर स्माइल क्यों की जा रही है और तुम्हारा चेहरा बहुत कुछ कह रहा है, कुछ हुआ था क्या? काजल की बिना कुछ कहे ही आशुतोष ने सब समझ लिया था। काजल आशुतोष की तरफ पलटी और बोली, मुझे नहीं पता आपने आशी और अभिमान के रिश्ते को लेकर क्या फैसला लिया है। आपका हर फैसला आशी बिना किसी सवाल के मान लेगी। जो भी आप डिसीजन लो, प्लीज हमारी बेटी के लिए सोच समझ कर लेना, वो बहुत मासूम है, मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। हाँ ठीक है, मेरा जो भी फैसला होगा वो थोड़ी देर में तुम सबको पता चल जाएगा। खैर छोड़ो, इतनी सारी तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। घर को बिल्कुल ऐसे तैयार किया है जैसे किसी की शादी होने वाली हो। एक नॉर्मल सा डिनर है, पहले पता होता तो बाहर अरेंज कर लेता, आशुतोष ने काफ़ी रूखे तरीके से कहा। आप बहुत रूढ़ हैं, बिल्कुल उस लड़की की तरह, अचानक काजल के मुँह से निकला। कौन सी लड़की? आशुतोष ने उसे घूरते हुए पूछा। वही लड़की जिसकी वजह से आज मेरी आशी की परवरिश पर मुझे गर्व हो रहा है। पता है, मॉल में एक लड़की मिली थी, मैंने उसकी हेल्प की और उसने बदले में मुझे थैंक यू तक नहीं कहा। ऊपर से मेरे मुंह से निकल गया कि उसको न जाने उसके माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं, तो उल्टा मुझे ही सुनाने पर आ गई। बोलती है बहुत पहले मर गए। अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो संस्कार देने की क्लासेस खोल लो, मैं लेने आ जाऊंगी। बहुत ही बदतमीज लड़की थी, काजल ने मुंह बनाते हुए पूरी कहानी बता दी थी। आशुतोष ने गहरी सांस ली और कहा, इसमें गलती उस लड़की की नहीं तुम्हारी है। तुम्हें किसी अनजान लड़की को इस तरह सीख नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, हो सकता है सच में उसे सिखाने वाला कोई ना हो, ऐसे में किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए। रही बात आशी की परवरिश की, हाँ उसका बिहेवियर काफी अच्छा और शांत है। आखिर बेटी किसकी है, काजल ने प्राउड स्माइल के साथ कहा तो आशुतोष ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ इशारा कर दिया था। काजल से बात करके आशुतोष तुरंत दूसरी तरफ मुड़ते ही उनके चेहरे के भाव सख्त हो गए थे और आंखों में हल्की नमी उतर आई थी। वैसे तो आशी के आने के बाद वो अपनी बेटी आशिका को याद नहीं करते थे, पर आज रह रहकर उन्हें अपनी बेटी की याद आ रही थी। शायद इसकी एक वजह अभिमान को वापस घर में बुलाना था। आशुतोष ने जल्दी से अपने आंखों के कोनों को साफ किया और वहां से अपने कमरे में जाने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, दिल को कितना भी समझाने की कोशिश कर लूं, लेकिन तुम्हारी याद आ ही जाती है बेटा। अगर आज तुम हमारे साथ होती तो शायद तुम भी अपनी मॉम की तरह नरम दिल और बेबाकी से कुछ भी बोलने वाली होती, या शायद तुम मेरी तरह होती। सोचने का क्या फायदा है जब तुम इस दुनिया में हो ही नहीं। ऊपर से जिसकी वजह से आज तुम इस दुनिया में नहीं हो, उसी को मैंने अपने घर बुलाया है। आशुतोष खुद को मन ही मन तैयार कर रहा था ताकि वो अभिमान का सामना कर सके। वहीं यज्ञ तो घर भी नहीं आया था।